नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय की तह तक जा रहे हैं, यज्ञ।
यज्ञ, हाँ।
आमतौर पर यज्ञ सुनते ही हमारे मन में वो हवन कुंड और आहुतियां ये सब आता है, पर क्या इसका मतलब सिर्फ इतना ही है?
ये एक आम धारणा है।
हमारे पास स्रोत है पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक उद्बोधन जिसका शीर्षक है यज्ञ का तत्व दर्शन। ये अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था
जी।
तो आज हम इसी में छिपे ज्ञान और दर्शन को, मतलब इसके पीछे के मूल विचार को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई यज्ञ का असली मतलब क्या है और ये हमारे जीवन से, समाज से कैसे जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल। और ये उद्बोधन बहुत खूबसूरती से बताता है कि यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है।
अच्छा।
हाँ, इसमें बताया गया है कि कैसे देने का भाव, मतलब त्याग और परमार्थ, यही पूरी सृष्टि का, हमारे समाज का मूल आधार है।
पूज्य गुरुदेव शुरू में ही एक बड़ी जरूरी बात कहते हैं कि हमारे आसपास जो भी सुविधाएं हैं, है ना, जैसे मशीनें हैं,
हाँ,
या विज्ञान की जो भी देन है, वो सब तो समाज से मिला है।
हाँ।
तो हम सब समाज के ऋणी हुए और यज्ञ, वो कहते हैं, इस ऋण को चुकाने का, समाज को वापस देने का एक तरीका है।
बिल्कुल सही। और वो जो यज्ञ का कर्मकांड हम देखते हैं, घी, शक्कर, मेवा अग्नि में डालना, वो असल में एक प्रतीक है, सिंबॉलिक है।
प्रतीक किस बात का?
वो ये सिखाता है कि भाई हम जो भी कमाते हैं या हमारे पास जो भी चीजें हैं, उन पर सिर्फ हमारा ही हक नहीं है, उसमें समाज का भी हिस्सा है।
अच्छा।
हाँ, गीता में भी तो कहा है ना कि जो देवताओं को दिए बिना, मतलब समाज हित में लगाए बिना, अकेले ही खाता है या भोगता है, वो तो एक तरह से चोरी का अन्न खाता है, पाप करता है। तैर दत्ता न प्रदायेभ्य और भुंजनते ते त्वद्यम पापा वाले श्लोकों का यही भाव है।
इसमें वो घी वाला उदाहरण भी बड़ा रोचक है कि बच्चा है, उसे घी खाना है, जो कि स्वाभाविक भी है। हाँ, बिल्कुल।
पर पिता उसे हवन में डालता है जैसे कि वो पूरे विश्व के साथ उसे बांट रहा हो।
हाँ।
और फिर विज्ञान की बात भी आती है कि कोई चीज नष्ट नहीं होती।
सही कहा, रूप बदलती है बस।
हाँ, तो हवन का घी सूक्ष्म होकर हवा में फैल जाता है और हर प्राणी तक पहुंचता है, चाहे राय बराबरी क्यों ना हो। ये सबको देने की भावना है।
कमाल है।
और देखिए, यही लेने और देने का सिद्धांत, यही तो जीवन का आधार है।
या।
जैसे हम सांस लेते हैं तो छोड़ते भी हैं, है ना,
जरूरी है।
भोजन करते हैं तो उसका निष्कासन भी जरूरी है।
बिल्कुल।
वैसे ही समाज से लेना अगर स्वाभाविक है तो समाज को देना भी उतना ही जरूरी है।
बिल्कुल।
इस बहाव को रोकेंगे तो गड़बड़ होगी, विनाश होगा।
प्रकृति में भी तो यही चक्र दिखता है, बिल्कुल साफ। समुद्र है, वो बादलों को पानी देता है, बादल धरती पर बरसते हैं और धरती नदियों के जरिए उसे वापस समुद्र तक भेज देती है। ये पूरा एक सिस्टम है, कोई भी इसे तोड़ेगा तो तबाही आ जाएगी।
और हमारा शरीर, वो भी तो ऐसे ही काम करता है। हाथ कमाता है, मुंह खाता है, पेट पचाता है, फिर हृदय खून को सब जगह भेजता है, नसें वापस लाती हैं। ये आपसी सहयोग, ये सहकार, यही तो जीवन है।
सही बात है। अच्छा, इसमें अग्नि को यज्ञ का पुरोहित कहा गया, अग्नि में ले पुरोहिता।
हाँ, अग्नि को मौन शिक्षक कहा है पूज्य गुरुदेव ने। वो बिना बोले सिखाती है।
क्या सिखाती है?
पहली बात, उसकी लौ हमेशा ऊपर उठती है। ये क्या सिखाती है? कि हालात कितने भी मुश्किल हों, अपने आदर्श, अपने सिद्धांत हमेशा ऊंचे रखो, नीचे मत गिरने दो।
वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और
दूसरी बात, अग्नि अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को अपने जैसा बना लेती है। लकड़ी हो, लोहा हो, सब अग्नि रूप हो जाते हैं। इसका संदेश है कि हम जहां रहें, अपने आसपास अच्छा प्रभाव डालें, लोगों को अपने जैसा गुणी बनाने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी फैलाएं।
अच्छा, और
तीसरी बात, अग्नि कभी जमा नहीं करती, संचय नहीं करती। जो भी उसे मिलता है, घी, समीधा, वो उसे सूक्ष्म बनाकर हवा में फैला देती है। मतलब जो मिले उसे लोकहित में लगा दो, बांट दो, जमा मत करो।
ये संग्रह वाली प्रवृत्ति के बिल्कुल उलट वितरण का संदेश।
और चौथी बात,
चौथी है ऊष्मा और प्रकाश। अग्नि हमेशा गर्म रहती है यानी सक्रिय, और प्रकाश देती यानी ज्ञान।
तो संदेश है कि जीवन भर सक्रिय रहो, ऊर्जावान रहो और ज्ञानवान बनो, प्रकाशवान बनो, दूसरों को भी रोशनी दो। तन से बूढ़े हो सकते हैं पर मन से नहीं, मन हमेशा एक्टिव, प्रकाशमान।
अद्भुत, ये अग्नि के चार गुण। अच्छा, इसमें मनुष्य और यज्ञ के जन्मजात संबंध की भी बात है। गीता के श्लोक सयज्ञः प्रजाः सृष्टाः का जिक्र करते हुए,
हाँ बिल्कुल, कि मनुष्य यज्ञ यानी कर्तव्य भावना के साथ ही पैदा हुआ है, और माँ का उदाहरण दिया है पूज्य गुरुदेव ने जो बहुत ही मार्मिक है।
हाँ वो तो है।
एक नारी 9 महीने अपने खून पसीने से बच्चे को सींचती है, पालती है, जन्म के बाद अपना सब कुछ, अपना दूध पिलाकर उसे बड़ा करती है, ये जो त्याग है, ये जो बलिदान है, यही तो यज्ञ है।
सही बात है।
इस निस्वार्थ यज्ञ के बिना तो हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं था।
अच्छा, यज्ञ के कुछ शारीरिक और मानसिक लाभों की भी बात की गई है।
जी, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यज्ञोपति का जिक्र है कि हवन का जो धुआं है वो एक तरह का सूक्ष्म इंजेक्शन जैसा काम कर सकता है।
इंजेक्शन कैसे?
मतलब वो बिना किसी बाधा के सोते हुए व्यक्ति तक भी श्वास के जरिए पहुंचकर रोगों को दूर करने में मदद कर सकता है, ऐसी मान्यता है।
अच्छा, पर शायद मानसिक रोगों पर ज्यादा जोर है, क्रोध, चिंता वगैरह।
हाँ ऐसा लगता है। उद्बोधन में कहा गया है कि यज्ञ मानसिक रोगों जैसे गुस्सा, बेचैनी, मन का भटकना, इनकी भी चिकित्सा है। पूज्य गुरुदेव मानते थे कि आज की बहुत सी समस्याएं असल में दिमागी बीमारियां हैं। और उनकी दवा, उनका इलाज, वो कहते थे हवन कुंड में तैयार होता है। इसीलिए रोज घर में गायत्री मंत्र से कम 5 आहुतियां देने का सुझाव भी दिया है।
तो अगर हम सार देखें तो यज्ञ सिर्फ आहुति देना नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
ये तो जीवन जीने का एक तरीका है, त्याग, सेवा, सहकार और लगातार देते रहने का सिद्धांत
है ना।
एकदम,
ये व्यक्ति, समाज और विश्व में शांति और सुव्यवस्था का आधार बन सकता है। और यहाँ जो देवता शब्द आता है यज्ञ में, वो कोई व्यक्ति नहीं,
हाँ,
बल्कि श्रेष्ठ विचार है, अच्छी भावनाएं हैं, सद्गुण है। यज्ञ से हम इन्हीं का आवाहन करते हैं, इन्हें पुष्ट करते हैं।
तो पूज्य गुरुदेव का ये तत्व दर्शन हमें यही याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारा होना, हमारा अस्तित्व वो देने पर टिका है।
सही कहा।
अग्नि की तरह ऊंचे आदर्शों के साथ एक्टिव और रोशनी फैलाते हुए जीना, शायद यही सच्चा यज्ञ है।
बिल्कुल।
तो अंत में एक सवाल मन में आता है, आज के इस दौर में जहां हम अक्सर लेने और जमा करने पर ही ध्यान देते हैं, वहां हम अपने रोज के जीवन में, अपने कर्मों में इस यज्ञीय भावना को, मतलब बिना किसी स्वार्थ के देने की भावना को कैसे और ज्यादा सक्रिय कर सकते हैं, कैसे उतार सकते हैं?
सोचने वाली बात है।